वियतनाम में पैदा हुए डेविड सबसे पहले सिडनी में तब शरणार्थी की तरह बसे जब वो 8 वर्ष के थे। कई युवा ऑस्ट्रेलियंस की तरह डेविड को मैरुआना या गांजे का पहला अनुभव हाई स्कूल में हुआ। ये आखिरी बार उन्होंने तथाकथित पॉट पिया क्योंकि उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आया। लेकिन 19 साल की उम्र में उन्हें हेरोइन की लत लग चुकी थी।
Numb the sensation, relaxed, nothing bothered you, you know, so all your worries or all your problems, you know, didn't seem to matter so much anymore.
जब उनके लिए अपनी लत को फंड करना बहुत महंगा हो गया तो डेविड ड्रग सप्लायर बन गए और 3 साल बाद जेल पहुंचे। ये लत करीब 20 साल तक अनिरंतर रूप से रही जब तक एक एपिफनी या अनुभूति ने डेविड को प्रोफेशनल सहायता ढूंढने में मदद की।
I'm 40 now. I think I looked at the 60-year-old guy and I didn't want to be a 60-year-old still dependent on drugs and yeah, it was time for a change.
उनके परिवार को डेविड के ड्रग की लत के बारे में करीब 20 सालों तक पता नहीं था।
That would be shameful. Yeah. To stop to having a problem, yeah, let alone drug problem. Because they're pretty straight, pretty law-abiding citizen. So a suitably well that they didn't know nothing about it.
Professor Mary Thiessen, University of New South Wales के National Drug and Alcohol Research Centre में Senior Research Fellow हैं। उनका कहना है कि कई युवा ऑस्ट्रेलियंस अपने जीवन काल में शराब और ड्रग्स एक या दो बार ट्राई करेंगे।
So the most common drugs consumed in 12 to 17 year olds are alcohol and tobacco. In terms of illicit drugs, the most commonly used illicit drugs in 12 to 17 year olds is cannabis. But when I say common, it's only 1 in 8 who will have used cannabis in the last year. And in terms of other illicit drugs like ecstasy and methamphetamine, again, it's only 1 in 50.
Kelvin Chambers, New South Wales स्थित Drugs and Alcohol Multicultural Education Centre या DAMEC के अध्यक्ष हैं, जहां फिलहाल डेविड की काउंसलिंग जारी है। उनका कहना है कि कई युवा लोग जो शराब और ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इनके अधीन हो जाए।
Usually we find kids that develop a dependency is not necessarily because of the drug or alcohol itself. It's for a whole range of issues. And it's usually used predominantly as an inappropriate coping mechanism. So when parents or families find kids that have been using at home, usually it's just one bit of a whole big picture of kids having pressure from school, not coping appropriately with friends, finding a whole range of different sorts of stressors in their lives.
हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 5 में से 1 घर पर अंग्रेजी से अलग भाषा बोलते हैं, राष्ट्रव्यापी शराब और नशीले पदार्थों के लिए इलाज सेवाओं का डेटा दिखाता है कि 2012 और 2013 के बीच उनके करीब 87% क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। केल्विन चेम्बर्स का कहना है कि प्रवासियों के कम प्रतिनिधित्व का कारण संभवतः कुछ सांस्कृतिक और भाषा की दृष्टि से विविध समुदायों में नशीले पदार्थों को लेकर जो स्टिग्मा या लांछन होता है वो हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए देश में बसने से संबंधित दबाव ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं।
Intergenerational clashes, they come into a new community. There's a whole range of pressures as they try and fit into a new community. There's a whole lot of baggage that they bring across from overseas. And usually we find the kids that get into trouble are the kids that haven't been able to develop good coping mechanisms.
डॉम एनिस योडा यानी यूथ ड्रग एंड अल्कोहल एडवाइस सर्विस हेल्पलाइन के मैनेजर हैं। वो पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से जो युवा लोग और परिवार ड्रग्स और शराब से प्रभावित हैं, उनकी सहायता करते हैं। उनके क्लाइंट्स में वियतनाम जैसे युद्ध से ध्वस्त देशों के लोग भी रहे हैं जो अपने समुदायों से डिस्कनेक्टेड या असंबंधित थे या जिनका मानसिक आघात या जख्मों का लंबा इतिहास रहा है।
Growing up in Australia where they were sort of almost torn between two cultures of family expectations and culture and then at the same time so not quite fitting in with family expectations and cultural norms of what their parents and elders felt but at the same time coming to Australia and perhaps not quite at that point feeling they were part of the mainstream.
उनका कहना है कि लड़ाई क्षेत्रों से बचकर जो नए समुदाय आए हैं उनमें भी नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के मिलते जुलते पैटर्न्स दिखाई देते हैं.
More recently, this is not universal, but we've seen very similar circumstances with young people from, you know, Middle Eastern and African backgrounds, with a very similar sort of migrant pattern and a very similar story. It helps us to sort of move beyond this idea of drug and alcohol related problems being about individuals making poor choices or people not trying hard enough or doing bad things.
थियो चैंग फैमिली ड्रग सपोर्ट के नेशनल प्रोग्राम मैनेजर हैं और वहां ग्रुप काउंसलर हैं. उनका कहना है कि प्रवासी माता पिताओं को अक्सर अपने प्रियजनों के नशीले पदार्थों की लत की कठिन परिस्थिति को स्वीकारने में कठिनाई होती है.
For many migrant families, coming to a new country is bewildering in itself. But they've had to really work and work really hard to provide to their children things that they themselves may not have had. And for many migrant families, for that child or that family member to then use drugs in a way that's chaotic and disruptive is a big slap in their face.
अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य संभवतः ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एक खुले और सच्ची बातचीत करने पर गौर करना चाहिए. UNSW की प्रोफेसर मैरी टीसन का कहना है कि अगर आपको व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा हो तो आप खुले प्रश्न पूछें.
If you're noticing that your children are withdrawing from friends and family, or if there's a change in their friends, or dropping their school work, that there are signs of hostility or depression, or they're wanting to borrow lots of money, don't necessarily assume immediately that drugs are the cause of it. We would suggest that you start the conversation with, "I noticed you haven't been yourself lately."
DAMEC या DAMEC के Kelvin Chambers कहते हैं कि अगर माँ बाप को घर में ड्रग्स मिले तो ये अति आवश्यक है कि वो शांत और नॉन जजमेंटल रहें या आलोचनात्मक ना रहें. उनका सुझाव है कि माँ बाप कुछ इस तरह इस पर बातचीत का रुख कर सकते हैं.
Tell me why. What sort of feelings are happening that you feel like that has to happen? And to start that dialogue in a safe and comfortable way.
विक्टोरियन सरकार के बेटर हेल्थ प्रोग्राम का कहना है कि माँ बाप को ड्रग्स पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि आपके पास तथ्य हो और आप अपनी चिंताएं शांति से ऐसे वक्त उठाएं जब दोनों पक्ष शांत हो. उनकी सलाह है कि आप अल्टीमेटम्स ना दें बल्कि अपने बच्चों को नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य और जीवन शैली को जो खतरे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करें. केल्विन चेम्बर्स का कहना है कि प्रवासी परिवारों में ड्रग्स से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करना संभवतः शर्मनाक और कलंकित महसूस करने जैसा हो सकता है.
The family itself draws further and further away from the community contacts they so desperately need. Go and look for help for a range of services that are available in local community centres, local health centres. It's confidential and it's ways to work within kids and within family trying to address some of the issues they're facing.
वहीं एसीटी सरकार का पेरेंट लिंक अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उस संबंध में विस्तृत सलाह ऑफर करता है. उनकी सलाह है कि आप व्यक्ति और उसके व्यवहार को अलग करने की कोशिश करें. उन्हें दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी कदर करते हैं, लेकिन उन्हें आपके मूल्यों के बारे में याद दिलाएं और याद दिलाएं कि आप अपने घर में किस चीज को अनुमति देंगे. फैमिली ड्रग सपोर्ट के थियो चैंग कहते हैं कि माँ बाप को भी अक्सर सहायता की जरूरत होती है.
We've got two opposing forces where the user is probably not ready to stop using, and the family are in all different sorts of stages. You know, they start with denial and then they become really emotional when they accept that there is drug use, and now they feel, you know, all the pain from, you know, from anger to fear and anxiety to guilt to grief, a whole number of things.